नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम 11वां स्कंद अध्याय 5। नारद मुनि का व्यासदेव को शिक्षण। श्लोक क्रमांक 23। तो ये हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे, फिर उसका अनुवाद हिंदी में करेंगे। ध्येयं सदा परिभवज्ञ अभीष्टदोहम्। तीर्थस्पदं शिववीरिञ्चि नूतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवार्दिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ध्येयं सदा परिभवज्ञ अभीष्टदोहम्। तत्रास्पदं शिववीरिञ्चि नुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाप्तिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ध्येयं सदा परिभवज्ञ अभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चि नुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चि नुतं शरण्यम्।
Shabda dheyam, fit to be meditated upon, sada, always, paribhava, the insults of material existence, gnam, which destroys, abhishta, the true desire of the soul, doham, which amply reward, tirtha, of all the holy places and great saintly personalities, aspadam, the abode, Shiva Virinchi, by the greatest of demigods, Lord Shiva and Brahma, Nutam, which are bowed down to, Sharanyam, most worthy of taking shelter, Britya, of your servants, Artiham, which reveal the distress, Pranatapala, O protector of all, who simply offer respects to you, Bhavabdhi, of the ocean of birth and death, Potam, which are suitable boat for crossing, Vande, I offer my homage, Mahapurusha, O Lord Mahaprabhu, Te, to you, Charanaravindam, lotus feet. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Translation. My dear Lord, you are the Mahapurusha, the Supreme Personality of Godhead, and I worship your lotus feet, which are only eternal object of meditation. Those feet destroy the embracing condition of material life and freely award the greatest desire of the soul. The attainment of pure love of God, my dear Lord, your lotus feet are the shelter of all the holy places and of all the saintly authorities in the line of devotional service, and are honored by powerful demigods like Lord Shiva and Lord Brahma. My Lord, you are so kind that you willingly protect all those who simply bow down to you with respect, and thus you mercifully relieve all the distress of your servant. In conclusion, my Lord, your lotus feet are actually the suitable boat for crossing over the ocean of birth and death, and therefore even Brahma and Lord Shiva seek shelter at your lotus feet. So this purport is of many pages, so we'll just read for few. The incarnation of personality of Godhead in Kali Yuga is described and worshipped in this verse. The sage Karabhajana, after describing the incarnation of God in each of the three previous yugas, Satya, Treta and Dwapara, presented suitable prayers which are utilized for glorifying the Lord in each particular age. After describing the Lord's manifestation in Kali Yuga with the verse Krishna Varnam Tvisha Krishnam, this is the next verse are now presented to glorify the Lord's appearance in Kali Yuga as Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Varnam. Chaitanya Mahaprabhu appeared in Kali Yuga and teaches everyone to chant the holy name of Krishna. The members of the ISKCON movement are so much absorbed in Krishna Varnam or chanting the holy name of Krishna that sometimes ordinary persons refer to them as the Krishnas. Thus, whoever comes in contact with Chaitanya Mahaprabhu's movement immediately began to worship Krishna by chanting his holy names. The word dheyam sada are always to be meditated upon indicate that there is no hard and fast rules in this age for chanting the names of Krishna. In Kali Yuga, the authorized process of meditation is to chant the holy name of the Lord, especially the Mahamantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. This process is to be executed constantly and always sada. Similarly, Chaitanya Mahaprabhu stated, Namna Makari Bahuda Nijasarva Shakti Statra Arpita Niyamita Smaranena Kala. In Kali Yuga, the Supreme Lord has kindly invested all of his potencies in his holy name, and there is no hard and fast rules for chanting the name. The mention of such rules refers to Kala Desha Niyama or regulations of the time and place. Normally, there are strict regulations governing the time, season, place, condition, etc., under which one may execute a particular Vedic ceremony or chant a particular mantra. However, one should chant the holy name of Krishna everywhere and at all times, 24 hours a day. Thus, there is no restriction in terms of time and place. This is the meaning of Chaitanya Mahaprabhu's statement. इसका अनुवाद बताते हैं कि भगवान जो महापुरुष हैं उनके चरणों में हम वंदना करते हैं, क्योंकि जो ध्यान करने का वस्तु वो एक ही है. उनके चरणों को जो व्यक्ति शरण लेते हैं वो भौतिक बंधनों से छुटकारा प्राप्त करते हैं और भगवान का शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं. और सारे जो तीर्थ स्थान हैं और सारे जो महान व्यक्ति हैं सभी का वो एक ही शरण है, और जो भी उनको शरण प्रणाम करते हैं उनका भगवान उद्धार करते हैं बहुत ही कृपा करके. और अंत में बताते हैं कि वो एक ही मार्ग है जिनके शरणों से एक भवसागर को हम पार कर सकते हैं. इस प्रकार से ब्रह्मा और शिव भी उनके चरणों का शरण प्राप्त करते हैं. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतराधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधा श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण. तो मैं सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि मैं कृष्ण का गुणगान कर सकूँ मेरा शुद्धिकरण के लिए. तो गौर पूर्णिमा रहा है इसलिए हमने ये श्लोक का चुना है. तो इसमें 11वां अध्याय में करभाजन मुनि अलग अलग अवतारों का वर्णन करते हैं. तो पहले सत्ययुग का, त्रेतायुग का और द्वापर युग का करने के बाद 31वां श्लोक में बताते हैं कि इस प्रकार से द्वापर युग के लोग भगवान का गुणगान करते हैं, और कलयुग में भगवान का अलग अलग नियमों के द्वारा भगवान का आराधना करते हैं. तो वो भगवान क्या है उसका अगले श्लोक में बताते हैं, 32 में 22 32 में कि कृष्णवर्णम तुषाकृष्णम संगोपंगास्तु पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसः। पहले वो भगवान के बारे में बताते हैं कैसे भगवान है, कृष्णवर्णम है, तो कृष्ण का वर्णन करते हैं और कृष्ण का हर समय वो नाम लेते हैं और उनका वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से ये श्लोक बताते हैं त्विषा कृष्णम, लेकिन उनका जो रंग है अकृष्ण है, मतलब कृष्ण का रंग नहीं है, अलग है। और संगोपांगास्तु पार्षदम, वो अपने अंग और उपांग के साथ वो प्रकट होते हैं, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर और सारे भक्तों के साथ और पार्षदम के साथ। यज्ञ संकीर्तन पर यजन्ति सुमेधसः, तो जो सुमेधसः बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, इस भगवान को आराधना करते हैं कलयुग में। तो सुमेधसः यज्ञ, इस प्रकार का यज्ञ करते हैं, यजन्ति सुमेध। तो इस श्लोक बताने के बाद उनके जो कार्य हैं, तो ठीक है इस प्रकार का कोई भगवान होगा कलयुग में, कर्भाजन मुनि बता रहे हैं कि इस प्रकार के भगवान आने वाले हैं कलयुग में, तो ये भगवान का कार्य क्या क्या होगा वो अगले श्लोक में बताते हैं। तो क्या करने वाले हैं, तो जनरली भगवान को किसी को अवतार को एक्सेप्ट करने के लिए हमको शास्त्र का प्रमाण लगता है, तो जो शास्त्र बताते हैं कि भगवान है तो उनको हम स्वीकार करते हैं। तो मुंडक उपनिषद में बताते हैं कि ये भगवान को आप जिस व्यक्ति को चेतना है वो ये भगवान को समझ सकते हैं, ऐसा श्लोक है। मतलब कलयुग का जो भगवान है, जो व्यक्ति को चेतना है वही उनको समझ सकते हैं। अभी उपनिषद का श्लोक ऐसे होता है, वो डायरेक्टली बताते नहीं कि ये है ऐसा है, तो उसको आप समझेंगे तो थोड़ा बुद्धि है तो समझ जाएंगे। तो इस प्रकार का श्लोक है। तो भारत के जो लोग हैं वो हिस्ट्री का अच्छा रिकॉर्ड नहीं रखते, क्योंकि उनको ऐसा किसी के बारे में चर्चा करना इतना जरूरत नहीं लगता, क्योंकि सार बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो व्यक्ति है सिर्फ विष्णु और उनके भक्तों के अलावा और किसी का ऐसा कोई पुस्तक लिखा नहीं है एक्चुअली। सो अभी देखेंगे हमारा जो भारत का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो ब्रिटिशर्स ने लिखा एक्चुअली, क्योंकि भारत वालों को इतना जरूरत नहीं पड़ा, एक्चुअली जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कोई भी देखेंगे पुराने टाइम पे जो बुक लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं, मोस्टली एनोनिमस रखते हैं। एनोनिमस मतलब अपना नाम गुप्त रखते हैं। तो अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा स्टोरी नहीं है, सिर्फ दो ही चीज़ पता है उनके बारे में कि वो उनके माता पिता उनके बचपन में गुजर गए और उनका नाम श्यामदास था, वो बहुत ही रेयर, और सभी को क्या बताया कि वो कविराज हैं। कविराज मतलब डॉक्टर को कविराज बोलते हैं, शायद वो मेडिसिन थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं इसलिए कविराज हैं, और इतना अच्छा कविता के रूप में लिखा इसलिए कविराज हैं, और दीक्षा होने के बाद उनका नाम कृष्णदास है। और उन्होंने अपने बारे में थोड़ा लिखा चैतन्य चरितामृत में, क्यों, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु का गुणगान करना चाहते हैं, इसलिए वो मीनकेतन रामदास का कहानी थोड़ा लिखते हैं, बस उसके सिवा कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में ज़्यादा स्टोरी नहीं है। हालांकि इतना बड़ा उन्होंने पुस्तक लिखा, मतलब उस समय भारत का जो संस्कृति है कि अपने आप को इतना ज़्यादा गुणगान नहीं, क्योंकि सेंटर किसको रखना चाहते हैं, भगवान को सेंटर रखना चाहते हैं, इसलिए हम देखेंगे ज़्यादा पुस्तक नहीं है किसी और को गुणगान करते हुए, बहुत ही कम। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु का है, उनका गुणगान 100 पुस्तक में है, ऑलमोस्ट 100 बुक्स आर देयर फुल वॉल्यूम्स ऑन भगवान चैतन्य महाप्रभु का। हम कुछ ऐसा चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य मंगल ऐसे कुछ पुस्तक का हम देखते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर पुस्तक लिखे हैं। और ऐसा नहीं कि उनके जाने के बाद 20 साल के बाद, नहीं, जब वो थे तभी उनके जो कंटेम्प्ररी, मतलब उस समय के इतने बड़े पंडित और महान व्यक्ति, उस समय उनके हर कार्य को वो लिखना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि इधर बताते हैं कि भगवान का प्रकट होने का क्या कारण, कि वो सिखाना चाहते हैं। तो इस भगवान का इस उद्देश्य को जानते हुए तो भक्तों ने क्या किया, तुरंत जो भी उन्होंने कार्य किया हर कार्य को लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके द्वारा ही वो सिखा सकते हैं लोगों को। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने खुद कुछ पुस्तक नहीं लिखा, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं किस प्रकार से, तो इसलिए उन्होंने हर इंसिडेंट को जितना हो सके उतना एलोबरेटली लिखना शुरू कर दिया। जब चैतन्य महाप्रभु का लीला चल रहा था तब से ही उन्होंने लिखना शुरू किया, और मुरारी गुप्त ने सबसे ज्यादा चैतन्य महाप्रभु का बाल लीला लिखा था, चैतन्य चरित। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो भी पास टाइम है ज्यादा से बाल लीला और मध्य लीला का ही, क्योंकि अंत लीला का जो भगवान का 18 साल का जो लीला है उसमें ज्यादा वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान दिन भर भगवान कृष्ण के विरह में वो उनका भाव प्रकट होता था, और रात में घर से बाहर कहीं और प्रकट हो जाते थे, और इसी प्रकार से उनका लीला चलता था। मतलब ज्यादा उसका वर्णन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वर्णन भगवान का बाल लीला और मध्य लीला का है। अभी अंत लीला में देखेंगे कि अलग अलग लीलाओं का वर्णन है, उसमें हरिदास ठाकुर का, सनातन गोस्वामी का, जगदानंद का, इस प्रकार का अंत लीला में अलग अलग भगवान के भक्तों का ही वर्णन है। भगवान का लीला कम है, भगवान का और उनके भक्तों का वर्णन, क्योंकि भगवान का जो लीला है अंत लीला में बहुत कम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भगवान का जो वर्णन है, जो वैदिक संस्कृति में भारत के लोग, इतना सारा किसी व्यक्ति के ऊपर पुस्तक नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन। अभी देखेंगे भगवान है, लेकिन पहले भारत भूमि में प्रकट हुए, तो ऐसा है कि सारे भगवान बंगाल में ज़्यादा प्रकट होते हैं, मतलब कलयुग के भगवान, और वो चैतन्य महाप्रभु भी आ गए, और वो भी ब्राह्मण के घर में, तो उनको समझना एक्चुअली थोड़ा चेतना जिसका वृद्धि हुआ वही समझ सकते हैं। जब प्रभुपाद एक बार अफ्रीका गए थे तो अच्छा बहुत बड़ा कीर्तन हुआ था, सारे भक्त लोग आए थे, फिर एक टीवी न्यूज़ चैनल में प्रभुपाद का इंटरव्यू हुआ, तो भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु का उधर फोटो रखा, चैतन्य महाप्रभु ऐसे खड़े थे, तो रिपोर्टर जो एंकर था उसको बहुत फोटो देख के थोड़ा अलग लग रहा था, उन्होंने पूछा ये आपके भगवान है क्या, तो प्रभुपाद इतने जोर से बोले कि क्यों आप बोलते हैं कि भगवान एक व्यक्ति के रूप में नहीं हो सकते, हाउ कैन यू से दैट लॉर्ड कैन नॉट बी ए पर्सन एंड हाउ कैन नॉट बी ए नो। तो मतलब ये एक्सेप्ट करना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है कि भगवान एक व्यक्ति हैं, 500 साल पहले आए थे और चले गए, तो डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ऐसा पूछा एक बार कि कितने लोगों को पता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है इसको आने से पहले, बहुत लोगों को पता नहीं, एक बार हमने बुक में पढ़ लिया होगा हिस्ट्री में चैतन्य महाप्रभु एक भगवान है, तो ऐसा एक संघ में डिवोटीज के संघ में पूछा था कितने लोगों ने, एक डिवोटी ने हाथ उठाया, बोला मैं एक्चुअली भगवान मानता था, बोले कहाँ देखा था, बोले मैं यूक्रेन गया था तब उनको देख के आया, तो मतलब यूक्रेन में गौरनिताई को देख के उनको लगा हाँ ये भगवान है, नहीं नहीं, लेकिन बाद में वो इस्कॉन में आए, तो मतलब ऐसे। तो अभी देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसको समझने के लिए थोड़ा चेतना में परिवर्तन होना चाहिए। तो मुंडकोपनिषद में बताते हैं कि इस प्रकार से समझा जाता है। तो देखेंगे कि सडनली हर कोने में भगवान चैतन्य महाप्रभु का गुणगान हो रहा है और सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, तो ये सिद्ध करता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, क्योंकि और ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला शब्द बताते हैं कि ध्येयम सदा। ध्येयम सदा मतलब जो भगवान उनको या स्मरण करने के लिए मदद करते हैं वो एक्चुअली कलयुग के भगवान हैं, ध्येयम सदा, मतलब उनके वजह से हम भगवान को स्मरण कर पा रहे हैं। सो सत्यम परम धीमहि, मैं प्रणाम करता हूँ, ध्यान करता हूँ। तो ध्यान करना एक्चुअली सारे शास्त्रों का जो सार है क्या है कि स्मर्तव्यम सत्यम विष्णु स्मर्तम ने जाते सर्वविध निषेदाशु ये तो यह किंकरा। सो हर समय भगवान को ध्यान करने का, तो ये ध्यान करने का जो इंस्पिरेशन है भगवान खुद दे रहे हैं, ये पहला लक्षण है कलयुग का। ये भगवान को क्या कराते हैं, उनको स्मरण कराते हैं। तो अभी कल सत्ययुग में भगवान का स्मरण करने के लिए हृदय में लोग स्मरण करते थे, कैसे स्मरण करते थे, ध्यान करके। उसके लिए हमारा हृदय बहुत शुद्ध होना चाहिए। अभी लोग बोलते हैं हम अंदर में देखो, अंदर में देखेंगे क्या होगा, काम क्रोध लोभ होगा। अभी कुछ देखेंगे तो कुछ है ही नहीं अंदर में, काम क्रोध लोभ। तो भगवान को स्मरण करना बहुत मुश्किल है, तो भगवान के सामने बैठ के उनको स्मरण करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे आंख बंद करेंगे तो कहीं ना कुछ ना कहीं कुछ ना कुछ ध्यान आ जाए। तो ध्यान करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है। जनरली हमारा जो ध्यान है हमारे ऊपर रहता है, तो लेकिन हमको ध्यान करना चाहिए भगवान के ऊपर। तो ये एक्चुअली जो जो भगवान है हमको उनके ऊपर। तो ये सत्ययुग में लोग शुद्ध होने के कारण ध्यान कर पाते थे भगवान के ऊपर। लेकिन त्रेता युग जब आया तो यज्ञ को स्थापित किया क्योंकि लोगों का शुद्धता कम हो गया, तो ध्यान करना मुश्किल था। तो किस में ध्यान करते थे कि भगवान के लिए इतना बड़ा यज्ञ करना, तो सारे जो भगवान के रिलेटेड सामग्री है उसके ऊपर ध्यान करके करके भगवान के ऊपर ध्यान होता है। जनरली हमारा जो ध्यान है भौतिक चीजों में होने के कारण, वो तमोगुण होने के कारण उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है। अभी हमारा जो भी ध्यान है वो भौतिक चीजों के ऊपर, ये तमोगुण है तो हम तमोगुण से प्रभाव होते हैं और दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान के वस्तुओं के ऊपर ध्यान करते हैं हमारा शुद्धिकरण होता है। तो भगवान के वस्तुओं को ध्यान करते हैं तो भगवान को प्राप्त होते हैं। तो ये भौतिक वस्तुओं के ऊपर ध्यान करते हैं तो तमोगुण में जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट द्वापर युग में लोग यज्ञ भी नहीं कर पा रहे थे, उतना ध्यान करना भी मुश्किल हो गया। तो इसलिए क्या हुआ, भगवान के विग्रह आ गए। तो भगवान का बहुत बड़ा बड़ा मंदिर होता था और भगवान के विग्रह होते थे, तो लोगों को इतना इतना विश्वास था कि वो स्वयं भगवान ही है उधर। अब लोग जाते थे डायरेक्ट भगवान को मिलने के लिए, क्योंकि जो भी लीला होता था भगवान का लीला एक व्यक्ति के रूप में करते थे। तो हम देखेंगे कि सारे जो कहानियां हैं वो विग्रह के मतलब उनके ऊपर आधारित कहानियां होते थे। तो विग्रह ने ऐसे बात किया ये भक्तों से, इस भक्तों को इस प्रकार से आदान प्रदान किया, तो सारे लोग भगवान के पास जाते हैं तो हाँ एक व्यक्ति को मिलने के लिए जा रहे थे, इस प्रकार से भगवान को ध्यान कर पा रहे थे। इसलिए द्वापर युग में विग्रह अर्चना ऐसा सिर्फ प्रोसीजर ही नहीं है, क्योंकि उनको इतना चेतना भी था, मतलब कॉन्शियस थे कि वो व्यक्ति उधर खड़े हैं, हम जाएंगे तो थोड़ा ध्यान से जाना है, कुछ लेके जाना है, कुछ करके जाना है, तो इस प्रकार से होता था। लेकिन जब कलयुग आया तो पहला इतना चेतना नहीं है कि ये विग्रह को ये व्यक्ति के रूप में समझने के लिए। लोग आते हैं एक उनके साथ सेल्फी लेके, डायरा में लगता है उनको, हमारे राष्ट्र सखी देखेंगे तो मायापुर में और पंचतत्वों को तिरुपति मंदिर में आते थे, इस्कॉन तिरुपति में लोग आके डायरेक्टली देख के बोलते हैं भगवान किधर है, यही तो भगवान है, उनको लगता है वो डायरा में है। तो मतलब चेतना बहुत ही कम हो गया। और दूसरा है लोगों को बोलेंगे मंदिर आइए तो लोगों को टाइम कम है, मतलब कलयुग में लोग को टाइम नहीं रहता, तो इसलिए थोड़ा और भी मुश्किल होता है। रूम से मदन मोहन जाने के लिए भी टाइम नहीं रहता कभी कभी तो लोगों को बहुत टाइम लग जाता है भगवान के पास जाने मंदिर। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, खुद आ गए, किसके रूप में, नाम के रूप में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हर समय उनके ऊपर ध्यान कर सकते हैं, आप मेरे पास आने के लिए जरूरत नहीं, मैं आपके पास आ जाता हूं। तो ये भगवान है ध्येयम सदा, जो जिसको हम ध्यान, बक्शीदास दास ठाकुर बोलते हैं, देखिए इंद्रिय वस्तु है इसमें जगत में भोगने के लिए, आप भोगिए लेकिन उसके ऊपर ध्यान मत कीजिए, ध्यान भगवान के ऊपर कीजिए। तो ये बक्शीदास दास का टीचिंग है, इंद्रिय वस्तु भोगने के लिए है लेकिन ध्यान करने के लिए नहीं। लेकिन आजकल क्या होता है, लोग कुछ एंजॉय करते हैं, देखो मैंने ऐसा खाया, इधर ये मिलता है, उधर वो मिलता है, इधर ये देखने के लिए होता है, इधर वो देखने के लिए होता है, पूरा उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। मतलब ध्यान किसके ऊपर करते हैं, इंद्रिय वस्तुओं के ऊपर करते हैं। बक्शीदास से इसके ऊपर ध्यान मत करो, भगवान के ऊपर ध्यान करो, भोगने का है भोग के छोड़ दो उसको। लेकिन करते हैं थोड़ा, इतना मस्त मजा किया पार्टी में, उसके ऊपर इतना बड़ा चर्चा होता है और सभी लोग लाइक डिसलाइक, वो पूरा उसका चर्चा चलता है। मतलब ये जरूरत नहीं है एक्चुअली, ध्येयम सदा। तो जो भगवान हमको उनके ऊपर ध्यान करने के लिए मदद कर रहे हैं वो कलयुग के भगवान हैं। ये करबाजन मुनि बहुत पहले बता रहे हैं, 5000 साल पहले। तो और दूसरा है कि परिभावित अग्न। तो इस प्रकार से भगवान के ऊपर ध्यान करने से उसका परिणाम क्या होता है, तो ये दूसरा शब्द बताते हैं। तो परिभाविताज्ञ मतलब अपराध करने का जो प्रवृत्ति है, अपराध करने का प्रवृत्ति को कम कर देते हैं। तो दो प्रकार का अपराध होता है, अपराध मतलब नाश करने का भी। तो जनरली हमारा प्रवृत्ति है खुद को नाश करने का प्रवृत्ति बहुत है। तो जब सिगरेट का कंपनी कुछ साल तक पता नहीं चला कि सिगरेट पीने से उनको कैंसर आ जाता है, जब पता चला तो गवर्नमेंट ने कंपनियों को बोला आप उसके ऊपर वार्निंग लिखना चाहिए, स्टैट्यूटरी वार्निंग, कि सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से आपको बीमारी हो जाएगा, मर जाएंगे। बोले नहीं 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 नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती उनके ऊपर फोटो लगाया, और फोटो लगाने के बाद सेल बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इनेटली हमारे अंदर हमको नाश करने का प्रवृत्ति है। तो ये प्रवृत्ति, क्योंकि बहुत लोग को आते क्या जीवन है, कभी सुसाइड करके मर जाऊं, ऐसा बहुत लोग को लगता भी है। तो ये क्या है, ये सुसाइड करने का टेंडेंसी, वो प्रवृत्ति हर व्यक्ति के अंदर है अपने आप को नाश करने का। तो ये भगवान क्या कर रहे हैं, ये प्रवृत्ति को निकाल रहे हैं। तो क्यों गलत करना, जो चार नियम हैं हम पालन कर पा रहे। एक डिवोट जनरली जब भक्त बन जाते हैं तो घर को जाते हैं तो माता पिता डर जाते हैं, अरे टीवी नहीं देख रहा है, चाय नहीं पी रहा है, ये फ्रेंड्स के साथ घूम नहीं रहा है, तो ये सिगरेट, बाकी लोग सोचते अरे ये सिगरेट नहीं पी रहा है, दारू नहीं पी रहा है। मतलब जो ये चीज़ है अपने आप को नाश करने का प्रवृत्ति है। जब भगवान के ऊपर इस प्रकार से ध्यान करते हैं, जो भगवान इस प्रवृत्ति से हमको हटा रहे हैं, तो कलयुग में चार नियम पालन करना बहुत बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि ये सारे लोग वही काम करते हैं, लेकिन जो भगवान आते हैं उससे बचाने के लिए हमको ये प्रवृत्ति से। तो क्योंकि, और दूसरा है अपराध, मतलब खुद के प्रति अपराध, सो और दूसरे के प्रति अपराध। तो हम खुद को नाश करना चाहते हैं और दूसरों को भी नाश करना चाहते हैं, ये कलयुग का प्रवृत्ति है। तो किस प्रकार से, कि अभी देखेंगे कि कोई व्यक्ति ने 20-25 साल तक कुछ अच्छा काम किया, ये गलत काम करेंगे उसको फांसी पे लटका देंगे, बोले नहीं गलत किया, मतलब उसको, मतलब बाहर तो इतना मुश्किल होता है कि वो देखेंगे नहीं कि इसने इतना साल किया है, क्योंकि नाश करने का जो प्रवृत्ति है, अफेंड करने का, वो बहुत ज़्यादा है कलयुग में। और अभी सोशल मीडिया देखेंगे, कोई भी ऐसा डिबेट होता है एक दूसरे को निंदा करने में चला जाता है, और ऐसा रेस्पेक्ट का कुछ भाव ही नहीं है। तो निंदा करना तो पूरा सोशल मीडिया में देखेंगे किस प्रकार से, गुणगान नहीं होता है, निंदा ही होता है, ये प्रवृत्ति को हटाना। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम कर रहा है वो निंदा करने का प्रवृत्ति चला जाता है, मतलब हम निंदा कर रहे हैं, मतलब हम भगवान का नाम नहीं ले रहे ठीक से। तो हम ठीक से भगवान का नाम लेते हैं तो किसी का निंदा नहीं करेंगे, कैसे कि हम किसी का निंदा सुन रहे हैं, मतलब भगवान का नाम नहीं सुन रहे। हम भगवान का नाम सुन पा रहे हैं तो किसी का निंदा सुनने का इच्छा ही नहीं होगा हमको। तो ये एक्चुअली,
और दूसरा खुद का गुणगान सुनेंगे तो भगवान का गुणगान नहीं सुन पाएंगे, उसी प्रकार किसी का निंदा सुनेंगे तो भी भगवान का नाम नहीं सुन पाएंगे। तो हमको ये प्रवृत्ति हटाना है किसी का निंदा, तो कलयुग में ये निंदा का जो प्रवृत्ति है हम देखेंगे, मीडिया अभी न्यूज हो कोई भी चैनल हो टच करेंगे तो निंदा ही निंदा आएगा उसमें, तो इसलिए किसी का जप नहीं होता ठीक से, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया में व्हाट्सएप में न्यूज में आ जाता है तो जप नहीं कर पाएंगे ठीक से, क्यों उसमें निंदा ही सुन रहे हो। तो इसलिए न्यूज से क्यों दूर रहना है, क्योंकि हमको निंदा का प्रोपेंसिटी जो दूर करना है। तो भगवान आए परिभावित ज्ञा, तो निंदा करने का जो प्रोपेंसिटी है उसको निकालने के लिए आए भगवान, ये कलयुग के भगवान है चैतन्य महाप्रभु। तो सबसे बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है चैतन्य महाप्रभु का, जगाए और मदाए, सभी के प्रति वो अपराध कर रहे थे, बहुत ही अपराध कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु के उनको उद्धार किया बताने के लिए, देखो इतना अपराधी है इनको उद्धार किया है। तो हमारे अंदर जो प्रवृत्ति है अपराध करने का उसको हम रोकना चाहिए। तो जगाए मदाए को उद्धार करते समय जगाए मदाए ने बोला, भगवान स्वयं कृष्ण आए तो भी इतना उद्धार किसी का किया नहीं, क्योंकि जब भगवान आए थे उन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया, तो गजेंद्र का उद्धार करना आसान था क्योंकि उसने उनका शरण लिया था। तो कंस ने भी कंस का उद्धार किया अपने, लेकिन कंस का उद्धार करना भी आसान है, क्यों, क्योंकि वह हर बार हर समय आपका स्मरण करता था। पूतना का उद्धार करना भी आसान था क्योंकि उसने आपका सेवा किया, लेकिन हमने क्या किया, हम तो सिर्फ अपराध ही कर रहे थे, और उनको सिर्फ आपने उद्धार किया लेकिन हमको क्या दिया आपने, हमको प्रेम भक्ति दिया। तो मतलब कितना जीरो से लेके आपने हाईएस्ट दे दिया, तो आप ही भगवान हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है अपराध करने का, ये भगवान हटाते हैं और क्या करते हैं, हमको सबसे ऊंचा चीज देते हैं। तो ये द्वंद है, इससे भी बचाते हैं भगवान। तो हमारा जो अपराध करने का इच्छा है उसको भी निकाल देते हैं। तो और चैतन्य महाप्रभु ने जगाए मदाए का पूरा पाप ले लिया, बोले जो भी भक्तों का अपराध करता है उनको डोनेशन में दे देते हैं। तो हम भगवान के जप में रुचि नहीं हो रहा है, मतलब हमको समझना चाहिए कि हमारा प्रवृत्ति अभी भी है अपराध करने का। तो ध्येयम सदा परिभावित ज्ञ, तो हर समय अपने भगवान को ध्यान करने में लगाते हैं और ये अपराध का प्रवृत्ति है इसको निकालते हैं। ये कलयुग के अवतार हैं, करवाजन मुनि बोलते हैं। और तीसरा अभीष्ट दोहम, अभीष्ट दोहम मतलब अभीष्ट मतलब द ट्रू डिजायर ऑफ द सोल। तो हमारा जो आत्मा का सही जो इच्छा है उसको पूर्ण करने वाले। तो हमारा क्या इच्छा है, हमको लगता है हमारा इच्छा मतलब थोड़ा अच्छा पैसा होना चाहिए, बड़ा कार होना चाहिए, घर होना चाहिए, ऐसा कुछ इच्छा होगा नहीं तो अच्छा नाम कमाना चाहिए, लेकिन वो इच्छा को पूर्ण नहीं करने वाले। अभीष्ट दोहम मतलब जो आत्मा का जो सही इच्छा है उसको पूर्ण करने वाले ये भगवान है। तो सारे हमारे सही इच्छा क्या है हमारा वो भगवान जानते हैं, अभी हमको ही पता नहीं था हमको क्या इच्छा है। इधर आने के बाद पता चला कि क्या इच्छा करना चाहिए। अभी बोलेंगे क्या चाहिए आपको, मैं बोला सुबह सुबह हम प्रार्थना करते हैं तुलसी प्रार्थना में, मोरायोई अभिलाष विलास कुंज दियो वास, हमको राधा कृष्ण के लीलाओं में प्रवेश करने का इच्छा हो गया। अभी वो एक्चुअली हमारा अभीष्ट दोहम है, सही इच्छा है। तो पहले तो जनरली हमारा इधर क्या है कि जो परिभाविता ज्ञा में भी और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जनरली हमको पुण्य कार्य करने का टेंडेंसी है, पुण्य और पाप। तो पुण्य और पाप से भी बचाना अभीष्ट दो परिभावित ज्ञा, क्योंकि पुण्य करने का टेंडेंसी। अभी हम पूछेंगे भक्तों को कि झूठ बोलना अच्छा है बुरा है, बोलेंगे झूठ हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम होना चाहिए कृष्ण के लिए, सेवा होना चाहिए, उसके लिए हम झूठ भी बोल सकते हैं। मतलब क्या, मतलब पुण्य और पाप से हम बाहर निकल गए, तो द्वंद्व से बाहर निकलने का काम भगवान चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं हमको। तो हम जनरली इस द्वंद्व में फंस गए कि अच्छा बुरा अच्छा बुरा, लेकिन परिभाविता ज्ञान मतलब हमको अच्छा और बुरा से भी बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा है बुरा है हमको कुछ मतलब नहीं होता है, हमको किससे मतलब होता है, भगवान का सेवा से मतलब होता है। तो ये अच्छा बुरा भी हमको फंसा रहा है भौतिक जगत में, बुरा ही नहीं अच्छा कार्य करने से भी हम फंस जाते हैं, तो दोनों से बाहर निकाल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। और तीसरा अभीष्ट दोहम में सो भगवान का जो हमारा सही इच्छा, तो भगवान उसको पूर्ण कर रहे हैं कि हम लोग हाँ, तो हमारा इच्छा तो चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से पूर्ण कर रहे हैं, उनके स्तर पर लेके आ रहे हैं। मतलब जो प्रेम है भगवान का, तो बोल रहे हैं इस प्रकार से आपको कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना है। सो तो हमको ये थोड़ा देखेंगे कि जो हिप्पी हैं तो उनको भी प्रभुपाद के संग से इतने महान भक्त बन गए, और कृष्ण के लिए उनके उनके आंसुओं में उनके आंखों से भी आंसू आने लगे, मतलब उनको भी प्रेम होने लगा कृष्ण के प्रति। तो ये एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का अभीष्ट दोहम, सही हमारा इच्छा पूर्ण करने वाले। तो और नेक्स्ट है तीर्थस्पदम शिव विरिंचि नूतम शरण्यम। सो तो हमारा जो डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी जाएगा और सही इच्छा आएगा। सो इसमें बताते हैं कि हाँ, और एक छोटा पॉइंट है परिभाविताज्ञा, तो किस प्रकार से हमारा टेंडेंसी चला जाता है अपराध करने का, किस प्रकार से कि जब श्रीवास पंडित को हम लोग किस प्रकार से उससे जा सकते हैं टेंडेंसी से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो किस प्रकार से कि श्रीवास पंडित को जब गोपाल चापाल ने उनके घर के सामने दुर्गा का पूजा सामग्री रखा था, तो उन्होंने सोचा कि वो आके सारे लोगों को बताते देखो मैं इतना पतित हूँ। तो वो जनरली उनका जब लोग गुणगान करते हैं वो सोचते हैं लोग एक्चुअली मेरे बारे में ठीक से जानते नहीं, अभी बोलेंगे कि लोगों को जानना चाहिए कि मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ ताकि वो मेरा गुणगान नहीं करेंगे, तो लोगों को बताएं देखो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, आपको पता नहीं है मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूँ। तो लोग बोलते नहीं नहीं ये अच्छा व्यक्ति है, उसको साफ कर देते हैं। लेकिन श्रीवास पंडित सोचते हैं कि वो तृणादपि सुनीचे न होने के कारण उनको लगता है कि मेरे प्रति कोई अपराध कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना पतित हूँ, तो हमारे प्रति कोई अपराध कर ही नहीं सकता। तो जो तृणादपि सुनीचे नहीं होता उनको लगता है कि अरे कौन ऐसा मेरे बारे में बोल सकता है, कैसे कोई कह सकता है। लेकिन हम लोग नम्र रहते हैं तो हमारे प्रति अपराध होगा नहीं। तो ये एक्चुअली उनका उद्देश्य था कि कोई ऐसा रखा एक्चुअली मैं ऐसा ही हूँ, एक्चुअली मैं इससे भी गंदा हूँ लेकिन लोगों को पता नहीं है, उनको अब गलत फहमी हो रही है कि मैं इससे भी पतित हूँ, लेकिन उनको ठीक है इतना तो कोई बता रहा है मेरे बारे में। तो ये एक्चुअली तो तृणादपि सुनीचे होता है तो उनके प्रति अपराध नहीं होता और किसी के प्रति अपराध नहीं कर पाएंगे, इससे क्या होता है ध्येयम सदा हर समय भगवान को ध्यान कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दरवाजाते हैं कैसे भगवान का हर समय ध्यान कर सकते हैं, तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। सो तो इस प्रकार से हर समय भगवान के भक्त आनंद में रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब सन्यास लिया, क्यों सन्यास लिया, उन्होंने देखा कि सारे लोग उनके प्रति अपराध कर रहे थे। जब वे गोपी गोपी करके नाम पुकार रहे थे, तो एक ब्राह्मण शिष्य बोलते हैं कि आप कैसे गोपियों का नाम ले रहे हो, आप तो कृष्ण का नाम लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कृष्ण कृष्ण तो इतने चीटर हैं, वो उन्होंने पूतना को, एक औरत को मार दिया, उन्होंने वाली को मारा, उन्होंने इस प्रकार से हर समय इतने लोगों को धोखा देते हैं, उसका मैं कभी नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ गोपियों का नाम लूंगा। तो वो गोपी के भाव में थे, तो उन्होंने बोला कि ये अपराध है, ऐसा क्यों कृष्ण का नाम ले रहे। तो चैतन्य महाप्रभु और गुस्सा हो गए, एक लाठी लिया उनको मारने के लिए, तो भागने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु उनके पीछे दौड़ने लगे, उनको लगा मेरा जान चला जाएगा। फिर भागते भागते दूसरों के, जो बाकी ब्राह्मणों के पास जाते हैं और उनके पास बताते हैं कि इस प्रकार से निमाय पंडित को मैं बता रहा था कृष्ण का गुणगान करो, तो मुझे मारने के लिए आया जान से। तो उनको लगा ये स्मार्ट थे, उनको लगा कि किस प्रकार से ब्राह्मण के प्रति इस प्रकार से अपराध किया जाता है, तो उनका निंदा करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि ये एक्चुअली मेरे प्रति अपराध कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने निश्चय किया कि अभी मैं संन्यास लेता हूँ। तो अभी कोई जगह में किसी का अपराध होता है, उनको क्या लगता है, मैं ये जगह में कभी आऊँगा ही नहीं, मैं जाऊँगा छोड़ दो इनको, मैं अपना खुद का अपना दूसरा जगह कुछ करता हूँ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिया, तो क्यों संन्यास लिया, तो आचार्य बताते हैं कि जब राम ने सीता को वनवास भेज दिया, जब एक कोई निंदा कर रहे धोबी, तो आचार्य उसके कमेंट्री लिखते हैं क्यों राम ने भेजा, ताकि लोगों को सीता माता का वैल्यू पता चलेगा, कि उनका जो महिमा है वो जाने के बाद उसका वैल्यू ज्यादा पता चलता है, अरे अच्छा व्यक्ति था, अच्छे थे एक्चुअली, हम अपने अपराध किया। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब गए, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु को भेजा। नित्यानंद प्रभु आए प्रचार करने के लिए, तब बताया कि आपने क्या खोया अभी आपको पता चल रहा है। तो जब नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार से पता प्रचार किया, तो सारे लोगों को समझ में आया कि हमने क्या खोया। तब दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो लाखों में लोग आते हैं उनको। तो नित्यानंद प्रभु का प्रचार का जब प्रोग्राम होता है, तो हम लोग भी प्रचार करते हैं, 20-30 लोग को लेके आते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु प्रचार करते हैं तो लाखों लोग आ जाते हैं। तो ये सिद्ध करता है कि भगवान है। तो नॉर्मली मैं वही सोचा था कि जब महाराज बोल देते कि जब चैतन्य महाप्रभु आए थे विद्यावाचस्पति के घर में, तो उनको देखने के लिए लोग गंगा को पार करना चाहते थे, तो गंगा में नाव में बैठते थे, एक नाव में 500 लोग बैठ जाते थे, 1000 लोग बैठ जाते थे, नाव डूब जाता था, लेकिन धरती ऊपर आ जाता था, जिसको तैरना नहीं आता वो तैर के आ जाता था, फिर पेड़ के ऊपर खड़े हो जाते थे, 1000 लोग एक डाली के ऊपर खड़े हो जाते थे। मैं सोचा ये इतने लोग क्यों आ रहे, चैतन्य महाप्रभु तो इतने साल, तो 22 साल तो नवद्वीप में थे लेकिन कोई आया नहीं, लेकिन संन्यास लेके जब वापस आए तो सारे लोग आ गए। तो मैं सोचा उसमें वो गैप में क्या था, नित्यानंद प्रभु थे, इनने इतना प्रचार किया कि लाखों लोग आ गए। तो उन्होंने बताया अरे क्या खोया आपने, जो नित्यानंद प्रभु इतना इतना जबरदस्त प्रचार किया, लाखों लोग आ गए महाप्रभु को देखने के लिए। विद्यावाचस्पति के घर में 5 दिन थे, फिर भगवान गायब हो गए, फिर कुलीना जाते हैं, तो सारे लोग एक एक करके आते हैं कि भगवान मैंने हमने आपके प्रति इस प्रकार का अपराध किया, हमको माफ कर दीजिए। एक भक्त बोलते हैं कि भगवान मैंने हर समय वैष्णव का निंदा किया, अभी क्या करना चाहिए, मैंने विष पी लिया। भगवान बोलते अभी उसी मुंह से आप उनका गुणगान करो और भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से आप उनका गुणगान करो। तो भगवान आए परिभाविताज्ञा, तो इस प्रकार का अपराध करने का जो प्रवृत्ति है उससे बचाने के लिए, जो तृणादपि सुनिश्चय न होते, कभी अपराध नहीं करते, और क्या करते हैं, ध्येयम सदा, भगवान का हर समय ध्यान भी कर सकते हैं। तो क्योंकि कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को प्रति अपराध करने के बाद भी उनके पास गए, अभी विदुर के प्रति दुर्योधन ने अपराध किया तो विदुर चले गए छोड़ के, क्योंकि वो जगह में, और जब प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे तो उनका निंदा कौन कर रहे थे, उनके गुरु भाई जो प्रचार करना, उनको जो बख्शी दे, उनके गुरु ने आज्ञा दिया कि आप प्रचार करो, वो प्रचार नहीं कर रहे थे और जो कर रहे थे उनका निंदा कर रहे हैं। तो जिसे तो फिर भी प्रभुपाद बहुत नम्र थे, उनको कभी नहीं लगा कि, तो जीसस क्राइस्ट को जब उनको सूली पे चढ़ा रहे थे तो बोलते हैं कि मैंने इतना अच्छा काम क्या किया कि आप मुझे सूली पे चढ़ा रहे, मतलब इस प्रकार से तो चैतन्य महाप्रभु वो जगह को छोड़े नहीं, मतलब अपना दरवाजा बंद करके, डोर स्लैम करके चले गए, लेकिन वापस आए। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से तीर्थस्पदम, सो तीर्थस्पदम मतलब सारे तीर्थ उनके शरण लेते हैं। शिव विरिंचि नूतम शरण्यम, शिव विरिंचि नूतम मतलब ब्रह्मा और शिव भी उनका शरण लेते हैं, नूतम शरण्यम। तो सारे जगह जो हरिनाम हो रहा है वो चैतन्य महाप्रभु का कृपा है, और हर नगर और ग्राम में होने वाला है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु प्रेडिक्शन है, तो ये उनके आने का। और जब दक्षिण भारत में जब चैतन्य महाप्रभु गए, अभी भी कुछ मंदिर में देखेंगे दो व्यक्ति ऐसे खड़े हैं हाथ उठा के, लोगों को पता नहीं कौन है, ऐसे टेम्पल में कार्विंग रहता है। और कुछ आदिकेशव तिरुवट्टर ऐसे उस मंदिर में भी सुबह सुबह उठ के हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, ऑफकोर्स उल्टा बोलते हैं, लेकिन उधर भी हरे कृष्ण महामंत्र है, लेकिन लोगों को पता नहीं ये मंत्र कहाँ से आया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ऐसा घूम के एक राउंड मार के सारे लोगों को, थोड़ा तीर्थों को शुद्ध करके आ गए। और अद्वैताचार्य स्वयं स्वयं महाविष्णु है वो भी, और शिवजी भी हैं। चैतन्य महापुरुष के चरणों को वो टच करना चाहते हैं, उनको वो सेवा करना चाहते हैं। तो बहुत बार, एक बार कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो जाते हैं तो अद्वैताचार्य उनको चरणों का धूलि लेते हैं, उठ के थोड़ा देर कीर्तन करने वाले चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मेरा अभी भाव नहीं आ रहा है, मुझे किसी ने अपराध किया, मेरा चरणों का धूल ले लिया क्या? तो सारे लोग डर जाते हैं। फिर अद्वैताचार्य बोलते हैं भगवान मैंने ही लिया, क्योंकि आप लेने देते। फिर तुरंत चैतन्य महाप्रभु दौड़ के उनके चरणों का धूल ले लेते हैं। अद्वैताचार्य सोचते क्या करना चाहिए, इस प्रकार से हर समय मैं हार जाता हूँ। तो फिर उन्होंने उसे, उनको याद आया, अरे मैं पहले आया था शंकराचार्य के रूप में और एकदम अद्वैत फिलॉसफी बताया, अभी फिर रिपीट करता हूँ। तो फिर एक दिन बैठ के अच्छा से उसको रिपीट करने लगे, किस प्रकार से परम ब्रह्म एक है, सारे एक है, तो इतना जोर जोर से प्रचार करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला, उनको देख के और उत्साह से बोलने लगे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु पूछे, बताओ नो भगवान का रूप है? नहीं, निराकार है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु आके उनको मारते हैं। तो फिर बोलते हैं हाँ ये एक्चुअली मेरा पोजीशन है, मैं आपका सेवक हूँ। तो क्यों शिव विरिंचि नूतम, इवन ब्रह्मा शिवा भी चाहते हैं कि वो भगवान का सेवा करे, उनका शरण लेना चाहते हैं। तो जब हरिदास ठाकुर भी ब्रह्मा के रूप में, उन्होंने ब्रह्मा जब अपराध करते हैं तो कृष्ण का बहुत गुणगान करते हैं, तो भगवान इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है करके। तो फिर ब्रह्मा को लगता है इस प्रकार से होगा नहीं। तो फिर ब्रह्मा एक म्लेच्छ के परिवार में जन्म होते हैं हरिदास ठाकुर के रूप में, और फिर हर समय भगवान का नाम लेते हैं। तो और जब भगवान हरिदास ठाकुर अपना शरीर छोड़ते हैं तो भगवान के चरण कमल अपने छाती में लेके अपना शरण छोड़ते हैं। तो ब्रह्मा और शिव भी गौरांग महाप्रभु का इस प्रकार से शरण ले रहे हैं, और सारे जो तीर्थ हैं सारे नवद्वीप में प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि तीर्थस्पदम, उनको सारे तीर्थ को भगवान महाप्रभु का शरण लेना है। तो इधर बताते, तो ये भगवान है कलयुग के, सारे तीर्थ उधर हैं और सारे जो तीर्थस्पदम शिव विरिंचि नूतम, सारे महान लोग क्या करते हैं, शरण्यम, उनके शरण में जाते हैं, ये कलयुग के भगवान हैं। तो वृत्त्यर्थिहम मतलब किस प्रकार से अपने भक्तों को बचाते हैं, तो अलग अलग तरीके से बचाते हैं। तो जब महाप्रकाश लीला होता है तो चैतन्य महाप्रभु याद दिलाते हैं हर भक्त को कि मैंने आपको किस प्रकार से बचाया। तो गंगादास पंडित को बताते हैं कि आप जब, आपको याद है आपके गांव में यवन लोग आक्रमण कर रहे थे और कुछ यवन आपके पीछे लगे थे, आप अपने घर परिवार बच्चों को पत्नी को लेके भाग रहे थे, जब गंगा के तट पे आए थे तो आपने देखा कोई नहीं था और कुछ ही क्षण में वो आने वाले थे और उस समय आप प्रार्थना कर रहे थे कोई तो नाव वाला आएगा, तो एक नाव वाला आया था और आपने उनसे प्रार्थना किया कि मुझे आप लेके जाइए, तो आपको गंगा पार कराया। तो आपको पता है वो कौन है नाव वाला, मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से भगवान याद। और छोटा हरिदास को भी जब वो आत्महत्या कर लेते हैं प्रयाग में जाके अपने आप को डुबा देते हैं, तो फिर उनको भी भगवान कृपा देते हैं। हर रात को छोटा हरिदास आते हैं और कीर्तन करते हैं भगवान के लिए। तो भगवान वृत्त्यर्थिहम, भगवान अपने भक्तों को बहुत ही हर समय कृपा देते हैं। जब संन्यास लेते हैं तो सची माता को बहुत दुख लगता है, बोलते हैं मेरा तो जीवन आपके लिए है लेकिन आप संन्यास लेके जाएंगे तो मैं जी के क्या फायदा। तो भगवान बोलते हैं नहीं, आपको हर समय मेरा दर्शन होगा। जब भी सची माता कुछ खाना बनाती थी भगवान के सामने लगती, स्वयं महाप्रभु आके उसको पा लेते थे। तो ये एक्चुअली भगवान का कृपा है। कभी सची माता को हर दिन, लेकिन उनको लगता है नहीं मैं बनाया नहीं, फिर से जाके कुकिंग करती हैं, लेकिन हर दिन आते थे चैतन्य महाप्रभु। मतलब हमको लगता है कि भगवान ने संन्यास लिया कितना निष्ठुर है, नहीं, भगवान ने एक्चुअली, सबसे बड़ा दुख क्या है, भगवान को भूलना सबसे बड़ा दुख है और भगवान से दूर होना सबसे बड़ा दुख है। लेकिन उन्होंने कभी, इवन विष्णुप्रिया को हर समय भगवान का स्मरण होता था, हर समय उनके साथ रहते थे। तो उनके हृदय में हर भक्तों के हृदय में वो अपना आनंद देते थे। तो सची माता हो या विष्णुप्रिया हो, कभी भगवान को दूर नहीं हुआ। वृत्त्यर्थिहम, हर समय उन्होंने अपना कृपा दिया है। और प्रणतपाला, और अलग अलग कहानियां इस प्रकार से, किस प्रकार से वृत्त्यर्थिहम प्रणतपाला मतलब किस प्रकार से रक्षा भी करते हैं, उधर आनंद देते हैं, वृत्त्यर्थिहम आनंद देते हैं। तो और रिलीव्स डिस्ट्रेस, प्रणतपाला प्रोटेक्ट्स हु आर सिंपली ऑफर्स रेस्पेक्ट टू हिम, जस्ट उनको प्रणाम करने से उनका रक्षा दे देते हैं। सिर्फ उनका प्रणाम करना चाहिए गौरांग महाप्रभु का। तो ये कलयुग के भगवान है, उनको सिर्फ प्रणाम कीजिए आपका रक्षा हो जाएगा। तो वाणीनाथ जो एक भक्त थे, बड़े बिजनेसमैन थे, घोड़ों का बिजनेस करते थे महाराज प्रताप, तो उनका बेटा था बड़ा चंग, क्या नाम था, बड़ा दंडा। तो उनके साथ उनका कुछ बिजनेस चल रहा था, तो 2,00,000 कॉन्च मतलब शंख उनको देना था, तो दे नहीं पाए समय पे, उन्होंने कुछ मिसयूज किया, बोलते हैं कुछ डांसिंग लेडीज को देखने के लिए गए, उसमें खर्च कर दिया था उन्होंने, तो उन्होंने पैसा नहीं है। उनके पास अच्छे घोड़े थे, उन्हें बड़ा दंडा को बोला ठीक है हमारे पास अच्छे घोड़े हैं, इनका आप दाम लगा दीजिए, तो क्या नाम है, वाणीनाथ। तो वाणीनाथ बोलते हैं कि आप एक घोड़ों को दाम लगाइए, बहुत कम दाम लगाते हैं। तो बोलते हैं कि, तो उनको बहुत गुस्सा आता है, वो एक्चुअली 10,000 होगा, इन्होंने कुछ 200 रुपए बोला था उसको, इतना डिफरेंस में बोलते हैं। तो बोलते हैं मेरे घोड़े आपके जैसे, उनको थोड़ा एपिलेप्सी का थोड़ा बीमारी था, ऐसा ऊपर देखते थे। तो बोलते हैं मेरा घोड़ों को ऐसा एपिलेप्सी का कुछ बीमारी नहीं है, वो अच्छे घोड़े हैं। तो उनको बहुत गुस्सा आता है, उनको चांगा पे चढ़ाते थे, मतलब नीचे तलवार रखता है ऊपर से फेंकना। तो फिर सारे भक्त आके महाप्रभु को बोलते हैं कि आपके भक्त तो इनको इस प्रकार से छंगे पे चढ़ाया। महाप्रभु बोलते हैं मेरा काम नहीं है उसका, आप ऐसे बोलेंगे तो मैं अलालना चला जाऊंगा, मुझे इधर नहीं रहना। तो फिर दो तीन बार बोलने के बाद कुछ भक्त जाके डायरेक्ट राजा को बोलते हैं, फिर राजा को पता चलता है ऐसा हो गया, तो फिर उनको छोड़ देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं तो उन्होंने किया क्या उस समय, बोलते हैं उन्होंने सिर्फ आपका भगवान कृष्ण का नाम जप कर रहे थे और 1000 बार जप करने के बाद अपने हाथ को ऐसा कट कर देते काउंट के लिए। तो सिर्फ नाम जप किया उन्होंने और कुछ किया नहीं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाते हैं क्योंकि ये प्रण तपाल सिर्फ प्रणाम करने से ही रक्षा करते हैं। और लास्ट वाला एक मिनट में खत्म कर देंगे, भवाब्धि पोतम, तो उनके चरणों से हम ये भवसागर को पार कर पाएंगे। क्योंकि अभी देखेंगे बहुत बड़ा सबसे बड़ा मुश्किल क्या है कि किसी को शक्तिशाली है व्यक्ति तो कुछ छोटा चीज कर सकता है, लेकिन सबसे शक्तिशाली व्यक्ति क्या कर सकता है? कोई शक्तिशाली बॉम्ब होगा एक शहर को नष्ट कर सकता है, लेकिन एक जीवात्मा को ये भौतिक संसार से भव सागर पार करना बहुत शक्ति लगता है। मतलब शरीर से निकाल सकते हैं एक आत्मा को, लेकिन ब्रह्मांड से आत्मा को निकालना मतलब कितना शक्ति लगता सोचिए, वो शक्ति महाप्रभु का है। तो इसलिए सबसे शक्तिमान है तो भवाब्धि पोतम, ये भव सागर से पार करा सकते हैं। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। श्री गुरांग महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।